पेश है आज के मुख्य समाचार भव्या पांडे के साथ। इस बुलेटिन में लेबर ने बताया एस्टन उपचुनाव को पीटर डटन के नेतृत्व की परीक्षा, तस्मेनिया कर रहा है एक संभावित डेटा उल्लंघन की जांच, और खेल में इंडोनेशिया का कहना पुरुष अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी अधिकार खोने के बाद देश कर सकता है प्रतिबंधों का सामना। अब समाचार विस्तार से। तस्मेनियाई सरकार का कहना है कि वे संभावित डेटा ब्रीच की जांच कर रहे हैं। विज्ञान मंत्री मैडलिन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ निकटता से काम कर रही है ताकि उल्लंघन की सीमा का पता लगाया जा सके। ये ब्रीच तीसरे पक्ष के फाइनल ट्रांसफर के दौरान हुआ था। ये डेटा किस तरह का है और ब्रीच कहां हुआ है, ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि मंत्री मैडलिन का कहना है कि समुदाय को आश्वासन दिया जा सकता है कि कार्रवाई की जा रही है, और यदि कोई व्यक्तिगत डेटा से समझौता किया गया हो तो समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड-19 से प्रभावित स्वास्थ्य और विकलांग कर्मचारियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता आज से बदल दी जाएगी। सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि हाई रिस्क सेटिंग पैंडेमिक पेमेंट 31 मार्च को समाप्त हो गई थी और 14 अप्रैल के बाद ये क्लेम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर का कहना है कि एजेड केयर वर्कर्स के लिए $750 का अवकाश अनुदान इस समय से उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास छुट्टी का अधिकार नहीं है और जिन्हें कोविड-19 निदान के बाद आइसोलेशन पर मजबूर किया जाता है। उनका कहना है कि कोविड से रेसिडेंशियल एजेड केयर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।
Case numbers in aged care facilities where there is much more robust reporting have increased over the last several weeks, probably by about 65% off a very low base.
सरकार ने ये भी घोषणा की है कि कोविड-19 एंटीवायरल उपचार पैक्सलोविड के लिए पात्रता का विस्तार किया जाएगा। 60 से 69 वर्ष की आयु के लोग जिनमें गंभीर बीमारी का खतरा बना रहता है आज से फार्मास्यूटिकल बेनिफिट स्कीम के तहत पैक्सलोविड प्राप्त कर सकेंगे। लिबरल पार्टी को मेलबर्न में एस्टन की सीट पर कब्जा करने की उम्मीद है। ऐसा विवादास्पद पूर्व मंत्री एलन टच के बाहर निकलने से शुरू हुए उपचुनाव में कम वोटिंग के कारण है। 2022 के चुनाव में टच के खिलाफ हुए कड़े मुकाबले के बाद एस्टन को लिबरल्स ने 2.8% के मार्जिन पर रखा है, लेकिन अपेक्षित परिणाम के बावजूद अप्रैल फूल्स डे के उपचुनाव पीटर डटन के लिए कोई हंसी की बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वोटों को उनकी पार्टी के नेतृत्व पर एक वास्तविक निर्णय करार दिया जा रहा है। एपीएल उम्मीदवार मैरी डॉयल के समर्थन में पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी ने सुझाव दिया है कि लिबरल्स के लिए भारी बहुमत से कम कुछ भी डटन के नेतृत्व पर अभियोग ही होगा।
If you look at this seat in 2019, their vote had a 6 in front of it. They got 54.7% of the primary vote and a vote that was higher than 60%. History tells us that the coalition, the Liberal Party, should be in a very strong position.
न्यू साउथ वेल्स सरकार का कहना है कि वे स्वतंत्र सांसद गैरेथ वार्ड के यौन उत्पीड़न के आरोपों से लड़ने के दौरान फिर से कियामा के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के बाद संसद की प्रिविलेज कमेटी के पास भेज सकते हैं। पर्यावरण मंत्री पेनी शार्प का कहना है कि सरकार कई संभावित विकल्पों पर विचार कर रही है। पूर्व लिबरल मंत्री न्यू साउथ वेल्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही इस हफ्ते उनकी अदालत में पेशी के दौरान बिना सहमति के यौन संबंध, अभद्रता और आम हमले के 3 मामले सहित 5 अपराधों में दोषी न होने का अनुरोध किया गया है। पिछले साल पुलिस द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद श्री वार्ड को लिबरल पार्टी से निकाल दिया गया था और संसद से निलंबित भी कर दिया गया था। उन्होंने लगातार अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है और इस सप्ताह एक बयान में कहा है कि वे काम पर वापस आने के लिए उत्सुक हैं। ऑस्ट्रेलिया की विज्ञान एजेंसी का कहना है कि प्लास्टिक अब ऑस्ट्रेलियाई तटों पर पाए जाने वाले हर तरह के कूड़े की संख्या को पार कर गया है। CSIRO से पीटर मेफील्ड ने एक संसदीय जांच में बताया है कि ऑस्ट्रेलियाई तटरेखाओं पर 3/4 कचरा प्लास्टिक है और राष्ट्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले कचरे का 80% अभी लैंडफिल में समाप्त हो जाता है। इंजीनियरों का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने अभी तक प्लास्टिक से होने वाले जोखिमों का पूरी तरह से आकलन नहीं किया है। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से कला ने जांच की पहली सुनवाई में बताया है कि ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल केमिकल इंट्रोडक्शन स्कीम से अभी तक विनियमित नहीं है कि इम्पोर्टेड प्लास्टिक में क्या जहरीले योजक हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर लोगों के एक समूह ने हांगकांग में एक छोटे से विरोध का मंचन किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने कानूनी मान्यता पर ऐतिहासिक अदालत के फैसले का पालन करने से इनकार कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कानूनी निर्णय हांगकांग में ट्रांसजेंडर लोगों को पूर्ण सेक्स रीअसाइनमेंट ऑपरेशन से गुजरने के बिना ही अपने पहचान पत्र पर अपने लिंग मार्कर को बदलने का अधिकार देता है, लेकिन प्रदर्शनकारी एमरी फंग का कहना है कि वे अब भी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।
Court case itself went on for a good 5-6 years, and now after all the challenges we went through, we still have this ruling that has gone through, that's in our favour, but it's still somehow we're not able to actually go ahead with it, and there's no sign of implementation, no sign of timeline, no sign of clarification, despite us reaching out multiple times.
इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि वे इस फैसले का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और उचित समय में एक नीति समीक्षा समाप्त करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। विभाग ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि क्या उन्होंने इस निर्णय के बाद से लिंग मार्कर परिवर्तन के लिए आवेदनों को निलंबित कर दिया था, जैसा कि मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है। अधिकारियों ने पशु क्रूरता की जांच के एक हिस्से के रूप में रीजनल विक्टोरिया में दर्जनों बिल्लियों और बिल्ली के बच्चों को जब्त कर लिया है। आरएसपीसीए के पुलिस और निरीक्षकों ने बैलराज क्षेत्र में दो घरों पर छापे के दौरान कथित तौर पर 30 बिल्लियों को अस्वास्थ्यकर और सीमित परिस्थितियों में पाया गया, जिनमें से कई पानी तक पहुंचने में भी असमर्थ थीं। संदिग्ध अवैध बिल्ली के बच्चे पालने और बेचने के संचालन की जांच के बीच ये छापे मारे गए हैं। आरएसपीसीए विक्टोरिया का कहना है कि जांच में दो व्यक्ति शामिल हैं, जिन पर प्राधिकरण द्वारा समान अपराध के लिए पहले भी मुकदमा चलाया जा चुका है, लेकिन आगे कोई जानकारी नहीं दी गई। अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में आज के दिन इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 0.67 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 55.97 पैसे हो गई है। अब बढ़ते हैं खेल की खबरों की ओर। फुटबॉल की विश्व शासी निकाय फीफा कथित तौर पर अंडर 20 विश्व कप के लिए देश की मेजबानी के अधिकार को छीनने के बाद इंडोनेशिया के खिलाफ प्रतिबंधों पर विचार कर रही है। ये दावा इंडोनेशिया के फुटबॉल महासंघ के प्रमुख एरिक थोहिर ने किया है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि फीफा इंडोनेशिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने से रोक सकता है। एरिक का कहना है कि वे प्रतिबंधों से बचने के लिए फीफा से बातचीत में लगे हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो नहीं चाहते हैं कि देश वैश्विक फुटबॉल से बहिष्कृत हो। साथ ही उन्होंने मेजबानी के अधिकारों को खोने के बाद पीएसएसआई को देश में खेल को बदलने के आदेश दिए हैं। फीफा ने इस बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल सुहानी धूप खिली रहेगी। वहां का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। एडलेड में कल सूरज तेज रहेगा। वहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। मेलबर्न में कल बारिश के आसार हैं। यहां का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। कैनबेरा में कल ठंड और बादल छाए रहेंगे। वहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक होगा। सिडनी में कल बारिश रहेगी। वहां का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। ब्रिस्बेन में कल बादल रहेंगे। वहां का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में कल धूप खिली रहेगी। वहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। बात करें भारत की, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बादल छाए रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।